प्रिय भक्त जन, आज 13 से 120 का दिन आप सब के लिए मंगलमय हो। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक से ये बताना चाहूंगी कि जो भगवान का अनन्य भक्त होता है उसका योग और क्षेम भगवान बहन करते हैं। योग क्या होता है, क्षेम क्या होता है? जो वस्तु हमारे पास नहीं होती है वो भगवान किसी न किसी के द्वारा किसी को नियत बनाकर हमारे पास पहुंचा देते हैं। और क्षेम क्या होता है, जो हमारे पास है थोड़ा बहुत उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। जैसे कि हमने तुलसीदास जी के विषय में सुना है कि तुलसीदास जी की कुटिया में एक बार चोर आ गए कि जो कुछ सामान है ले जाएंगे चोर करके, लेकिन जब वो कुटिया के नजदीक पहुंचे तो उन्हें दिखाई देता कि राम और लक्ष्मण दो युवक धनुष बाण लिए हुए कुटिया के बाहर इधर से उधर टहल रहे थे। तो चोर सारी रात देखते है कि कब ये दोनों युवक जाएंगे, दोनों धनुष डाली जाएंगे तो हम चोरी कर लेंगे। लेकिन नहीं, सुबह हो गई, प्रातः काल लोगों को वैसे ही वापस जाना पड़ा। तो ऐसे हमने एक नहीं अनेकों ऐसी कहानियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भगवान भक्त के योग और क्षेम को स्वयं ही बहन करते हैं, उनका रक्षा करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि विष्णु पुराण में प्रहलाद जी का चित्र किस प्रकार से दिखाया गया है, उनका चरित्र क्या कहता है। पहला जी कहते हैं छोटा बच्चा है, बालक है, लेकिन क्या है, योग और क्षेम से हम भगवान बहन कर रहे हैं। वो केवल जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओम नमः वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय और विष्णु विष्णु बोलते हैं। जब हम इस तरह से भगवान का नाम लेते रहेंगे तो स्वयं भगवान हमारी रक्षा के लिए आएंगे और हम जो चाहते हैं वो हमारे द्वारा करवा भी देंगे। इसी प्रसंग में मैं महाराज जी के विषय में कुछ और आगे आपको ले जाती हूँ। अब महाराज जी क्या कर रहे हैं, ध्वजा स्थल का निर्माण। मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाराज जी सिद्ध थे, उनका संकल्प सिद्ध था। वो एक मुनि थे, एक ऋषि थे, एक महामना महापुरुष थे। वो जो चाहते थे वो हो जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सारा भार भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया था। आइए अब फरवरी 1980 में शिवरात्रि के दिन वरदाता भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और अप्रैल में हरिद्वार की यात्रा के उपरांत श्री महाराज जी का ध्यान सड़क की ओर गया। उसमें अप्रैल 1980 में ही नरेंद्र जी श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार नौकरी छोड़ मंदिर में रहने लगे थे। कुल्लू से आते हुए मंदिर के पास ही दाईं ओर एक चट्टान नदी के किनारे स्थित है श्री महाराज की चौबी, किस पर माँ की शक्ति पीठ स्थापित हो, इसलिए उस चट्टान पर कार्य शुरू करवाया गया। PWD ने इसका विरोध भी किया पर श्री महाराज जी की इच्छा थी कि ये बनना ही चाहिए और चट्टान पर बीचों बीच ध्वजा स्थल बनवाया गया। चारों ओर माँ के वाहन शेरों की स्थापना करनी थी। मंदिर में आज्ञा अनुसार शेर बनकर तैयार हो गए थे। ये पता चलते ही श्री स्वामी जी ने अपने कुछ भक्तों सहित मंदिर जाने के लिए तैयारी की। प्रथम जनवरी 1981 की बात है, सर्दी काफी है। नारायण राम प्रकाश शर्मा तथा नरेंद्र जी श्री महाराज जी के साथ मंदिर जाएंगे। वो नए मंदिर में अकेली रहेंगी, भालू और टाइगर मेरे साथी होंगे। इसलिए श्री स्वामी जी ने एक भक्त महिला को मनाली संदेश भेजा कि वे मंदिर आ जाए। भक्त महिला ने स्वीकार किया कि वह प्रातः प्रथम जनवरी को मंदिर में आ जाएगी। इसलिए श्री महाराज जी सब भक्तों को साथ लेकर प्रातः मंदिर चले गए और उस दिन रात तक मुझे अकेले ही मंदिर की देखभाल, पूजा आरती, जो भक्त लोग आते थे उनको चना देना और दूसरे कार्य करने थे, उन्हें व्यस्त नहीं पूरा दें उन्हीं कार्यों में। और भालू और टाइगर मेरे जो पक्के साथी थे, हम तीनों का आपस में आत्मा का संबंध था। वो मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, महाराज जी हों तो वो जंगल में जाते थे खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि माँ अकेली है, मैं अकेली हूँ, तो वो जाते ही नहीं, गए ही नहीं, और मेरे आगे पीछे ही घूमते रहे। सारा दिन निकल गया, मैंने हर एक बस जो मनाली से आती देखती, बस खड़ी हुई, कृष्णा जी उतरी या नहीं उतरी। और ऐसे ही सायंकाल हो गया, सर्दियों के दिन थे, 1 बजे मंदिर में तो सूर्यास्त हो जाता है, तो रात होने वाली लग रही थी मुझे। अचानक एक श्री विक्रम खेरा जी के मामा जी आए, श्याम जी, वो प्राय महाराज जी के पास आया करते थे। बस रुकी, मैंने देखा कौन आया है, तो देखा श्याम जी है। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए, मंदिर में गए और बाहर आकर उन्होंने चरणाम प्रसाद लिया। पूछा, माता जी स्वामी जी कहाँ है? मैंने कहा वो तो मंदिर चली गई है, और आप श्याम जी ऐसा करना कि लाला जी को पता दे दो कि स्वामी जी तो आए नहीं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो किसी को भेज दे। बस 4 बज चुके थे, रात होने वाली थी 5 बजे, तो रात्रि पड़ आ जाती थी उन दिनों, सायंकाल को पता ही नहीं चलता था कब व्यतीत हो गया। और श्याम जी चले गए और मैं अकेली ही मंदिर में, फिर से मैंने सब मंदिरों को साफ किया, आरती जलाई, आरती की, और फिर दरवाजे बंद करके भीतर आ गई। भालू और टाइगर मेरे साथ भीतर आ गए, सो सो करते, खाते कुछ नहीं, और मेरे इर्द गिर्द घूम करके मेरे पास बैठ जाते। मुझे स्वामी जी ने कहा था, माता जी 10 व्यक्तियों के लिए खाना बना के रखना, क्योंकि उनके साथ वाशिंग से कुछ लेबर पार्टी भी गई थी, तो सबके लिए खाना बनना चाहिए। तो मैं सोच रही थी क्या वैसे इतने आदमियों का खाना स्टोव पर कैसे बनाऊं। महाराज जी ने कहा था खिचड़ी बना लेना। अच्छा, खिचड़ी भी इतना बड़े पतीला कैसे बनाऊं, पतीला भी शायद नहीं था। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुकर में ही बना दिया जाए। मैं कुकर में खिचड़ी बनाती, फिर ठंडी हो जाती, तो मैं एक बड़े पतीले में सिल्वर का पतीला था उसमें डाल देती। इस तरह से शायद मैंने 5-6 कुकर वो खिचड़ी पकाई और कुकर में डाल दी। रात हो गई, 8 बज गए, तो भय भी लगने लगा, साये साये करके आवाज आ रही थी, इधर उधर कोई नहीं था। इन दिनों तो ये जो सब आज हम दुकानें देखते हैं, बसा हुआ शहर सा देखते हैं, कुछ नहीं था, नथिंग, कुछ नहीं था। तो बैठे यही करती हुई राम नाम जब खिचड़ी बनाती रही, तब लाला जी ने अपने बड़े बेटे रमन जी को भेज दिया, वो आ गए। उन्होंने कहा माता जी अच्छा मैं आ गया हूँ, मैंने कहा बैठो। वो बेचारा बाहर ही बैठ गया, कहता अंदर उसको पता था कि छोटी सी सोई है, छोटी सी कुटिया, और बाहर ही बैठ गया। फिर भी महाराज जी नहीं आए, लाला जी भी अपनी दुकान में ये देखते रहे कि श्री महाराज जी प्रातः ही चले गए हैं और माता जी बिल्कुल अकेली हैं। मैंने एक लड़का भेज दिया, एक लड़के से क्या होगा अगर कुछ ऐसी वैसी बात घट गई तो। उन्होंने अपने छोटे लड़के को कहा, दीपन जी को, कि जाओ अपने 2-4 दोस्त ले जाओ और माता जी का साथ दो। तो 8:30 बजे दीपन जी 4-5 दोस्तों के साथ आ गए। अब मेरा भय भी कुछ कम हो गया कि चलो बाहर ही बैठे हैं, 4-5 लड़के तो बैठे हैं। लगभग 9:30 बजे स्वामी जी की बस या गाड़ी आ गई, और मुझे आवाज आई, लड़कों ने भी आके बताया, दीपन जी ने, माता जी स्वामी जी आ गए हैं, स्वामी जी आ गए हैं। अच्छा, गाड़ी खड़ी हुई, शेरों को उतारा गया, और फिर महाराज जी आए, ऊपर कुटिया में बैठ गए। आते पूछा, माँ कृष्णा मम्मी कहाँ है? मैंने कहा महाराज जी वो तो आई नहीं। अच्छा आई नहीं, आप सारा दिन अकेली थी? मैंने कहा महाराज जी भगवान और आप तो मेरे साथ हमेशा ही होते हैं, तो ऐसा कोई डर नहीं लगा, और ये दो अपने प्यारे भालू और टाइगर मुझे छोड़ के एक क्षण भी कहीं बाहर नहीं गए। महाराज जी ने कहा बाबा खाना नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा। और राम जी को बुलाया, राम जी को बुलाकर कहा, रे आपने बोला था उसको कृष्णा मम्मी को? बोला हाँ महाराज जी, मैंने तो कहा था, उन्होंने वचन दिया था कि मैं सायंकाल नहीं, मैं सुबह 4 बजे की बस में मनाली से कुल्लू पहुँचाऊंगी। तो महाराज जी ने कहा देखो भाई, मम्मी जी ने हमें धोखा दे दिया, पापा को धोखा दे दिया। ये तो कोई घटना नहीं घटी, अकेले जंगल में पहाड़ में जहाँ कोई ना आस में है ना कोई पास में है, पूरा दिन माता जी मम्मी जी अकेली बैठी थी यहाँ, तो बाबा को तो बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही वो परेशान हो रहे थे। तो मैंने कहा स्वामी जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुश थी और कोई आया भी नहीं, एक दो भक्त आए जिन्हों को मैंने चना प्रसाद दिया और कोई मुश्किल नहीं मुझे आई। इस तरह से सब ने उसके पश्चात मैंने सबको भोजन खिलाया और 10 बज गए और 10 बजे के बाद सबने भोजन खाया, लेकिन श्री महाराज जी ने भोजन नहीं खाया। वो इसी चिंता में इसी दुख में दुखी हो रहे थे, उन्हें कुछ लग रहा था कि संसार में ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो कहते वचन देकर अपना वचन पूरा नहीं करते हैं। देखो बाबा को कितना बुलाते हैं, आओ आओ मनाली आओ मनाली आओ, और बाबा कैसे उनके घर में जाता रहता था। लेकिन आज क्या किया उन्होंने, ये कहने के बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है अब ठीक हो गया, अब वह परिवार भविष्य में कभी मंदिर नहीं आएगा, और भविष्य में जैसा ही हुआ। तो मैंने इस प्रसंग में आपको ये बताना चाहा कि जब हम भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं या अपना सब भार सौंप देते हैं, तो भगवान अपने भक्त का योग और क्षेम स्वयं बहन कर लेते हैं। श्री महाराज जी ने अब आगे हरिद्वार भ्रमणी दर्ज किया करके 14 अप्रैल 1981 को श्री महाराज जी ने नरेंद्र जी का एक भक्त परिवार को लेकर दिल्ली यात्रा पर गए। जगदीश व नारायण मंदिर की देखभाल के लिए नियुक्त थे। 15 तारीख को प्रातः बस दिल्ली बस स्टैंड पर पहुंची, वहां से टैक्सी द्वारा सब लोग श्रीमती नरेश के घर स्टाफ का लाश पहुंची। श्रीमती नरेश मेरे बचपन की सखी है, उनके माता पिता के घर के साथ ही उनका निहाल भी था और उनके नाना श्री मेरे माता जी के धर्म के भाई थे, इसलिए पांचवी कक्षा में कुछ महीने नरेश और मैं इकट्ठे स्कूल में पढ़ी थी। ये लगभग 1951 की बात है। उसके पचास नरेश जी से मिलन सन 1976 में नंदे में हुआ, जब मैंने संन्यास ले लिया था। नरेश के माता पिता दिल्ली रहते थे, इसलिए उसकी एजुकेशन वही हुई, वही उसकी शादी हुई और उसके पश्चात हम बहुत समय के पश्चात आपस में मंदिर में मिले। नरेश कुल्लू अपने मामा श्री कृष्ण गोपाल के घर रामगढ़ रायसन में आई थी। उसने अपनी मामी से पूछा, मामी जी गीता कहाँ होती है? तो उन्होंने कहा गीता ने नौकरी छोड़कर संन्यास ले लिया है और वह मंदिर में ही रहती है। वो मंदिर कहाँ है? इधर नेशनल हाईवे पर ही है। ये सारा पता लेकर नरेश अपने मामा जी के साथ मंदिर में आई और आकर की जैसे उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, तो हम दोनों आपस में गले मिली और बहुत हम प्रसन्न हुई। मुझे भी याद आ गई कि ये बचपन की वही नरेश है, उसे भी इतनी ही समय में हो आया। तत्पश्चात मैं नरेश जी को लेकर श्री महाराज जी की कुटिया में आई। इन दिनों श्री महाराज जी की कुटिया टूटी फूटी लकड़ी से बनाई गई थी, जिसमें जगह जगह लकड़ी के खाने बने हुए थे, जिससे हवा आती थी और धुआं आदि भी और दूसरी धूल आदि भी। महाराज जी अपने आंसू पे बैठे हुए थे, थोड़ा थोड़ा धुआं जल रहा था। मैंने जाकर कहा स्वामी जी स्वामी जी, ये मेरी बचपन की सहेली नरेश है। महाराज जी ने भावपूर्ण होकर के ऊपर की ओर देखा, क्योंकि मैं और नरेश तो दोनों खड़ी थी और महाराज जी आसन पर बैठे थे। भावपूर्ण देख कर कहा, अच्छा आप बाबा की माँ की सहेली हो, लाओ हाथ में लाओ और वचन दो कि आप जन्म भर बाबा की माँ का साथ देती रहेंगी। उसमें श्रीमती नरेश जी ने खुशी खुशी हाथ मिलाकर महाराज जी को वचन दिया। तब से नरेश जी हमेशा मुझे पत्र लिखती और श्री महाराज जी को अपने घर दिल्ली बुलाती थी। और मेरे लिए भगवान सारिया डॉक्टर प्रभु महाराज के लिए के लिए भी कुछ कुछ हमेशा भेजती रहती थी। उन्हीं नरेश जी के घर हम पहुँचे। श्री नरेश जी छुट्टी लेकर घर पर ही थी। उनके पति श्री नंदलाल दुआ, दोनों बेटियां नीता दीपा भी घर में ही थी। सब बड़े खुश हुए हमें देखकर। श्रीमती नरेश के माता पिता तथा भाई भी हमसे मिलने के लिए आए। उनको जब पता चला कि श्री महाराज जी आए हैं तो सभी ऐसे ही दौड़े चले आए जैसे कि मानो उन्हें भगवान ने लिया हो। श्री महाराज जी के आगमन पर वे अपने को धन्य मान रहे थे। दूसरे दिन श्रीमती नरेश के माता जी सबको अपने घर ग्रेटर कैलाश ले गए। सायंकाल सब वापस आ गए। अगले दिन नीता ने बस द्वारा दिल्ली दर्शन करवाया। लाल किला, राजघाट, शांति वन, लीला मंदिर, जंतर मंतर, कुतुब मीनार आदि। मैंने तो इससे पहले भी दिल्ली को देखा था। दिल्ली के दर्शन किए थे बहुत, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी 1960 की बात है, तो मेरे मामा मामी कुल्लू आए थे। उन्होंने मेरे माता जी को कहा कि गीता को हमारे साथ हरिद्वार में दिल्ली भेज दो। मैं उनके साथ पहले दिल्ली देख आई थी। फिर भी मैं दीपा और हम सब मिल करके उस बस में बैठे और हमने सारी दिल्ली के दर्शन किए। यह एक स्थान जहाँ की वो बस स्टैंड था, वहाँ बस खड़ी हुई। फिर महाराज जी उतर गए, हम बैठे, लेकिन थोड़ी देर में चालक आया और उसने गाड़ी चला दी। मैंने कहा महाराज जी, दीपा महाराज जी, महाराज जी। उसने चालक को कहा तो उसने फिर बस फिर से चक्कर काट करके वापस लाई। तो फिर हमारी दृष्टि पड़ी कि वहाँ स्वामी जी खड़े हैं, एक बच्चे की तरह इधर उधर देख रहे हैं कि बस कहीं गई होगी। तो हमने ड्राइवर को कहा कि यही बस खड़ी करो। वो खड़े हैं, महाराज जी दीपा गई और महाराज जी को हाथ से पकड़ करके ले आई और बस में बैठ गई। तो श्री महाराज जी एक बालक की भांति की आवाज में कहने लगे, माँ आप तो बाबा को छोड़ के चली गई थी, बाबा क्या करता, बाबा के जेब में पैसे भी नहीं थे और साथ ही नरेश मम्मी का एड्रेस भी नहीं, बाबा कहाँ जाता क्या करता। दीपा और नीता खिलखिला के हंस पड़ी और कहने लगी, स्वामी जी हम भले आपको छोड़ के जाते, हम तो आपको ढूंढ ढूंढ के लाते, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से हम नरेश जी के घर काफी देर तक, 7-8 दिन तक रहे और बहुत ही हमें वहाँ भक्ति भाव से अपना समय व्यतीत किया। फिर श्रीमती नरेश जी के ने हमें भाव भीनी विदाई दी और 17 अप्रैल को मैं नरेंद्र जी श्री महाराज जी के साथ हरिद्वार आ गई। अगले दिन हमने प्रातः ही 3 बजे उठकर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान किया और फिर ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। ऋषिकेश में गीता भवन परमात्मा के दर्शन करते हुए फिर वापस हरिद्वार आ गए। 19 अप्रैल रविवार के दिन प्रातः पुनः गंगा स्नान किया और बस द्वारा सहारनपुर पहुंची। यह मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि श्री महाराज जी को गंगा मैया से बहुत 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 प्यार था। जो प्रायः किसी न किसी बहाने से हरिद्वार का प्रोग्राम तय कर लेते थे और अपने भक्तों को लेकर प्रायः प्रति वर्ष गंगा जी के दर्शनों के लिए जाते थे। उन्होंने हरिद्वार में ही गंगा पूजन भी किया था। तो इस तरह से श्री महाराज जी हमें हरिद्वार में दिव्य आनंद देते हुए पुनः वापस आए। बस द्वारा हम सहारनपुर पहुंचे। सहारनपुर में से रेल द्वारा अम्बाला पहुंचे। रेल में कुछ सज्जन थे जिन्होंने अच्छा व्यवहार किया और हमें जगह दे दी। मुझे एक बहन मिल गई जो बहुत ही सुशील और सभ्य थी, जिसने मेरे हाथ से पंखा लेकर मुझे पंखा करना आरंभ किया तो मुझे नींद आ गई। अम्बाला से बस द्वारा हम चंडीगढ़ पहुंचे और रात्रि एक दिन चंडीगढ़ रहकर 24 अप्रैल 1981 को कुल्लू पहुंच गए। अब 1981 की पर 25 मई को श्री महाराज जी ने मणिकर्ण की यात्रा की। श्री महाराज जी को पाया देव स्थानों की यात्रा का बड़ा ही चाव कह सकते हैं या श्रद्धा और उनको विश्वास था, और साथ ही वो मेरा भी और अपने भक्तों का भी उद्धार करना चाहते थे। इसलिए वो हमें ऐसे अच्छे अच्छे स्थानों पर ले जाते थे जहाँ हमारा मन थोड़ा अन्य भगवान की भक्ति में रम जाता था। श्री दीरू राम उनकी पत्नी जीप द्वारा मंदिर आ गए तथा 6 बजे हम जेरी को चल पड़े। रात्रि 9 बजे हम जेरी पहुंचे। उन दिनों श्री राजन आचार्य जी और उनकी धर्म पत्नी जेरी में स्कूल में हेडमास्टर के कार्यालय कार्यरत थे। मास्टर जी ने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया, स्वागत किया और रात को उन्होंने अपने घर में अच्छे से हमारे विश्राम के लिए प्रबंध किया। दूसरे दिन प्रातः भारी वर्षा हो रही थी, लगभग 8 बजे हम मणिकर्ण के लिए चल दिए, लेकिन श्री महाराज जी मास्टर जी के घर पर ही समाधिस्थ रहे। मणिकर्ण की यात्रा करके हम 2 बजे जरी लौट आए और वहाँ से सायंकाल तक मंदिर पहुँच गए। इस तरह से आज मैं आपको कुछ ये प्रसंग सुनाकर अपनी गाड़ी को विराम देते हुए जय माता दी गीता माँ।